वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस वर्ष के गौर पूर्णिमा महोत्सव में। हम नासिक भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही विशेष कृपा रही है। हमारे श्री श्री राधा मदन गोपाल जी यहाँ अवतरित होने से पहले गौर निताय इन्होंने जो हमारा हृदय आकर्षित किया और इतने बद्धजीवों का हृदय आकर्षित किया और इनकी सेवा करने के पश्चात जो फल मिला, जो कि गौर निताय की सेवा करने का फल किसी भी प्रामाणिक भक्त को मिलना चाहिए, और वो है श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा। तो हमारा आभार हमारे जो गौर निताय हैं ऑल्टर के, केवल आभार नहीं बल्कि हमारी कृतज्ञता उनके प्रति ये नित्यकाल तक रहेगी। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य उन्होंने कहा है कि हम वैष्णवों के लिए ये दो महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है गौर पूर्णिमा और एक है भगवान की जन्माष्टमी, और दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं, क्योंकि दोनों भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव ही इसमें मनाया जा रहा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले आपके सामने एक द्वापर युग की कथा प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये बात हुई द्वापर युग में, वृंदावन के जो अलग अलग वन या ब्रज मंडल के अलग अलग वन, जिनमें से श्री श्री राधा कृष्ण इनका एक बहुत ही निजी या प्राइवेट वन या प्राइवेट कुंज रहा, जिसका नाम था निधु वन या निधि वन भी कहते हैं उसे। तो निधि वन में राधा और कृष्ण वो विहार कर रहे थे और उनके विभिन्न लीलाएं वहां पर चल रही थी, और एक समय ऐसा आया कि थक कर राधा और कृष्ण उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम के पश्चात अचानक श्रीमती राधा रानी वो थोड़ा भौचक्खा उठी, जैसे कि कोई बहुत ही विचित्र स्वप्न देखा, और उस स्वप्न देखने के वजह से वो कोई चिमक के उठता है। तो वैसे श्रीमती राधा रानी उठी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया और कहने लगी कि मुझे एक ऐसा स्वप्न आया अभी अभी कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये स्वप्न को मैं कैसे समझूं। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं, भाई क्या ऐसा स्वप्न था? तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैंने देखा कुछ भक्त वो एक नदी के तट पर हैं, और वो जो नदी है वो यमुना की तरह दिख रही है, लेकिन यमुना नहीं है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी केवल यमुना नदी के ही संपर्क में रही। तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि नदी तो थी यमुना की जैसी दिखती, लेकिन वो यमुना नहीं थी। और वो भक्त हालांकि आप ही के भक्त लग रहे थे, वैष्णव लग रहे थे, लेकिन वो ब्रजवासी नहीं दिख रहे थे। और वो लोग आपका कीर्तन कर रहे थे और बहुत ही विशेष शैली में, बहुत ही विशेष स्टाइल में आपका कीर्तन कर रहे थे, जो कि हम लोग वृंदावन में ऐसा कीर्तन नहीं देखे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, हालांकि वो सब कुछ समझ रहे थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे कि और आगे कहो क्या देखा उसमें। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि फिर मैंने देखा अचानक इन भक्तों के मध्य में एक बहुत ही लंबे कद वाले व्यक्ति, उन्होंने प्रवेश किया, बहुत लंबे कद वाले, और इतने लंबे थे कि दूर दूर से कोई भी उन्हें देख लेता, इतना लंबा उनका कद था। और वो फिर नृत्य करने लगे और वो कीर्तन करने लगे। तो जब मैंने उनको ध्यान से देखा तो उनके अंदर आपकी छवि दिखाई दी। तो राधा रानी भगवान से कहती हैं कि देखो, मुझे किसी भी पुरुष में आपकी छवि दिखाई देना यह बहुत अचंभे की बात है। तो मुझे लगा कि आप ही हो वो, लेकिन फिर मैंने देखा कि आप तो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन उनका जो वर्ण था वो गौर वर्ण था। आप लोग समझ रहे होंगे अभी धीरे धीरे। तो उनका गौर वर्ण था, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो फिर मैं भ्रमित हो गई कि ये मेरे श्याम जैसे ही हैं, लेकिन कलर कुछ गड़बड़ हो रहा है। और कलर मेरे जैसा, क्योंकि राधा रानी का एक नाम है गौरांगी, जिनके अंग गौर वर्ण के हैं, तो मेरे जैसी कांति। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो नहीं, नहीं मैं कैसे हो सकती, इतना बड़ा कद मेरा कैसे हो सकता, और ये तो पुरुष है। फिर मैं भ्रमित हो गई कि मेरे श्याम जैसे प्रतीत हो रहे हैं लेकिन वर्ण उनका नहीं है, वर्ण मेरा है लेकिन मैं नहीं हो सकती। क्या चल रहा था ये सब कुछ। और फिर ये जो ऊंचे कद वाले व्यक्ति, ये आपका कीर्तन करते 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 मेरा कीर्तन करने लगे, राधे 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 करने लगे। तो मुझे लगा ये कृष्ण ही हो सकता, क्योंकि मेरे नाम का कीर्तन तो, राधे राधे का कीर्तन तो कृष्ण करते हैं। लेकिन फिर देखा ये कलर में क्या है, और वाणी भी एकदम आपकी तरह थी, लेकिन वो कुछ मैच नहीं हो रहा था। वो आइडेंटिफिकेशन मैचिंग होता ना, वो मैचिंग नहीं हो रहा था। तो बताओ अभी आप बताओ कि कैसे समझूं मैं इस सपने को। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपना कौस्तुभ मणि निकाला और कौस्तुभ मणि दिया श्रीमती राधा रानी को और कहा कि इस कौस्तुभ मणि में देखो। तो जब कौस्तुभ मणि में श्रीमती राधा रानी ने देखा तो वही स्वप्न और वही ऊंचे कद वाले व्यक्ति, गौर वर्ण के, वो जो कीर्तन कर रहे हैं हाथ ऊपर कर कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो अब श्याम वर्ण में परिणित हुए और फिर गौर वर्ण में, फिर श्याम वर्ण में, फिर गौर वर्ण में। और फिर भगवान ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि वो स्वयं साक्षात मैं हूं। फिर भगवान कहे नहीं, मैं नहीं हूं। तो राधा रानी बोले, अरे आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, न तो वो तुम हो न मैं हूं, वो हम दोनों हैं। वो हम दोनों का मिश्रित अवतार है और वो मैं कलयुग में अवतरित होने वाला हूं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो श्रीमती राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण निधुवन में ये सब कुछ समझा रहे थे द्वापर युग में, कि कैसे वही भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हम कलयुग निवासियों के उद्धार के लिए वो अवतरित होंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा भाव द्युति सुविलतम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वो स्वयं साक्षात कृष्ण है लेकिन राधा की कांति लिए और श्रीमती राधा रानी के भाव को लिए। तो ये क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव लिया है चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए उन्हें भक्त अवतार कहा है। जैसे कि बाकी सारे अवतार जो हैं उनको कहते हैं कि वो साक्षात विष्णु तत्व हैं, हालांकि चैतन्य महाप्रभु विष्णु तत्व नहीं, वो स्वयं अवतारी कृष्ण हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को छिपाकर एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए उन्हें भक्त अवतार भी कहते हैं। और भारत में हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान साक्षात मानना ही तो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे पहले हमारे जब केवल गौर निताय ऑल्टर पर थे, अभी आप नहीं देख रहे होंगे, पीछे ग्रीन रूम में हो, तैयार हो रहे हैं। तो पहले जब ऑल्टर पर गौर निताय थे, बोला अभी भी हैं लेकिन केवल जब गौर निताय, तो लोग आकर पूछते थे। मुझे याद है कि एक मेरे मित्र आए थे दिल्ली से, तो पूछे कि ये दोनों कौन है। तो मैंने बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है। बोले हाथ ऊपर क्यों किए रहे हैं। तो पहले उनको लगा कि ये राधा कृष्ण है लेकिन हाथ ऊपर क्यों किए हैं, फिर ध्यान से देखा कि नहीं नहीं तो दोनों पुरुष दिख रहे हैं। फिर मैंने बताया कि कृष्ण और बलराम, और इस प्रकार से बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता। मुझे याद है कि ये मेरी दूसरी गौर पूर्णिमा थी जब मैं वृंदावन में था। तो वृंदावन में आपने देखा होगा तीन ऑल्टर हैं, पहला गौर निताय, फिर बीच में कृष्ण बलराम और लास्ट में राधा श्याम सुंदर का ऑल्टर। तो गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था, और वृंदावन का मंदिर ऐसा है कि बहुत से यात्रीगण वहां पर आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। और उस दिन, यही आज का ही दिन, होली का दिन, तो बहुत वृंदावन में भीड़ होती है होली के समय। तो मुझे याद है मैं गौर निताय के ऑल्टर के सामने खड़ा जप कर रहा था, और मेरे बगल में एक विदेशी हरे कृष्णा के भक्त, वो रशिया के, तो वो भी मेरे बगल में जप कर रहे थे और हम लोग थोड़ी बातें भी कर रहे थे। फिर अचानक एक दंपति, उन्होंने प्रवेश किया वो पिछले वाले डोर से और गौर निताय के सामने आए। अब ये भारतीय दंपति, तो मैं वहां पर खड़ा था तो इनका वार्तालाप सुनाई दे रहा था मुझे। तो जो पत्नी है पति से पूछती है, ये कौन है दोनों। तो अब कई बार देखते हैं ना भारत में, पति ये नहीं जताना चाहते कि उनको पता नहीं है, कई बार पता नहीं होता लेकिन ये नहीं जाना, विशेष रूप से पत्नी के सामने नहीं जताना चाहते कि मुझे नहीं मालूम। तो वो पति बोलने लगा, अरे तो राधा कृष्ण। तो पत्नी बोलते, लेकिन ऐसे कैसे राधा कृष्ण, बांसुरी नहीं कुछ और दोनों हाथ ऊपर हैं। बोले अरे ये अंग्रेज मंदिर है ना, ये हरे कृष्णा का अलग होता है सब कुछ। और आपने देखा होगा कि ये सब अपीयरेंस होता है, जैसे जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा, तो बहुत सारे भोग चढ़ते हैं भगवान को, और केक वगैरह ये सब चढ़ता है। तो वो सब सामने भोग वगैरह चढ़ा हुआ था, केक। तो पत्नी ने पूछा, नहीं 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 ये कुछ अलग ही है, अरे इतना सारा भोग चढ़ा हुआ है, ये केक है, आज जन्माष्टमी थोड़ी राधा कृष्ण हो सकते हैं, ये केक क्यों चढ़ा हुआ है इतना। तो वो पति भी देख रहा, केक क्यों ऑफर करेंगे। तो बेचारा मान गया वो कि नहीं पता अभी उसको। तब उसने जो ये मेरे बगल में जो रशियन डिवोटी चैंटिंग कर रहे थे, इनको पूछा कि सर व्हाट इज टुडे। तो अब ये इन्होंने आश्चर्य में इनको पूछा, यू डोंट नो, क्योंकि इनको लगा ये आप तो भारतीय हो, आपको तो मालूम होना चाहिए। बोले नो आई डोंट नो। बोले टुडे इज गौर पूर्णिमा। बोला अच्छा गौर पूर्णिमा, समझ में उनको कुछ नहीं आया। फिर कुछ 30 सेकंड बाद पूछा था व्हाट इज गौर पूर्णिमा। तो वो बताने लगा, अरे लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड इन मायापुर 500 इयर्स अगो, यू डोंट नो। बोला वेर इज मायापुर पूछ रहे। मायापुर, अरे मायापुर इज इन वेस्ट बंगाल। तो ये कहता अच्छा अच्छा आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये बता रहा था कि आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल बहुत दूर है, तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो ये बोले आई एम फ्रॉम मॉस्को। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव है वो हम कलयुगी जो लोग हैं हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जानना। केवल आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, ये केवल जानना नहीं कि हाँ वो वेस्ट बंगाल में मायापुर में एक सन्यासी हुए थे, कितने सारे इतने सन्यासी हुए भारत में, उनमें से वो एक हुए, नहीं, हमें सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जानना है। और इसलिए हमें उनके जो पार्षद और उनके जो अनुयायी प्रतिनिधि, उन्होंने जो समझाया है उसके द्वारा हमें समझना है। जैसे कि रूप गोस्वामी, हमने उनकी एक प्रार्थना भी कही मंगलाचरण में, रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया इस प्रार्थना के द्वारा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपको मैं नमन करता हूं, नमो, क्यों, क्योंकि आप महावदन्याय हो। महावदन्याय का अर्थ होता है आप परम दानशूर हो, यू आर द मोस्ट मैग्नानिमस ओ चैतन्य महाप्रभु। तो मानो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से ये पूछें कि भाई मैं तो एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में अवतरित हुआ हूं, तो मेरे पास क्या है दान देने के लिए। कोई व्यक्ति यदि दान देता है तो उसके पास कुछ बहुत धन होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं रूप गोस्वामी से कि भाई आप मुझे कह रहे हो कि मैं महावदन्याय हूं, मैं बहुत बड़ा दानवीर हूं, लेकिन मैं तो एक सन्यासी के रूप में अवतरित हुआ। तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आप कौन सा दान दे रहे हो, कोई साधारण धन नहीं इस संसार का, कृष्ण प्रेम जो कि सर्वोच्च धन है किसी जीव को प्राप्त करने के योग्य, वो कृष्ण प्रेम आप प्रदान कर रहे हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु पूछे, अरे भाई कृष्ण प्रेम तो कृष्ण प्रदान करेंगे ना, मैं कैसे प्रदान करूंगा। तब फिर रूप गोस्वामी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कृष्णाय, आप ही हो वो कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु शर्मा के कहते हैं कि अरे भाई कृष्ण तो श्याम वर्ण के थे, मैं तो गौर वर्ण का हूं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, हां आप वही कृष्ण हो, लेकिन यहां पर आप राधा रानी के भाव में आओ, गौरत्विषे नमः, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप वही कृष्ण हो, कृष्ण चैतन्य आपका नाम है और गौर आपका वर्ण है, लेकिन आप हो वही। तो उदाहरण दिया गया है कि जो प्रामाणिक भक्त होते हैं भगवान के, वो एक जैसा एक मालिक और एक कुत्ते का रिश्ता क्या होता है वैसे होते हो। तो जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक को किसी भी वेशभूषा में पहचान लेता है, चाहे वो मालिक सूट बूट पहन के आए, चाहे वो नाइट ड्रेस पहन के आए, वो जो कुत्ता है पहचान लेता है, ये मेरा ही मालिक है। तो उसी प्रकार से जो प्रामाणिक भक्त होते हैं भगवान किसी भी अवतार में आए वो पहचान लेते हैं, क्योंकि वो लॉयल होते हैं। लॉयल एक कुत्ते का विशेष गुण क्या है, वफादारी, और विशेष रूप से अपने स्वामी के प्रति उसकी जो वफादारी होती, चाहे स्वामी किसी भी दशा में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी रूप में हो, वो जो है पहचान लेता है। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी जो कि प्रामाणिक चैतन्य महाप्रभु के भक्त और कृष्ण के भक्त, वो पहचान लिए और कह रहे हैं कि हाँ आप ही वो कृष्ण हो, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे नमः। केवल नाम आपका गौरांग होगा लेकिन आप हो वही साक्षात कृष्ण। जैसे चैतन्य चरितामृत में ये कथा है, शची माता वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु समय निमाय पंडित उनको बुलाती है और उनको कहती है कि मुझे एक बहुत ही विशेष स्वप्न आया कल रात, और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हमारे जो घर के ऑल्टर के कृष्ण बलराम डीटी हैं, शची माता के ऑल्टर के डीटी कृष्ण बलराम, तो हमारे जो कृष्ण बलराम हैं, मैंने देखा कि तुम और नित्यानंद प्रभु और कृष्ण और बलराम, इन चारों में झगड़ा चल रहा है ऑल्टर में। मैंने भोग अर्पित किया और जब मैंने भोग अर्पित किया तो नित्यानंद प्रभु और तुम दोनों वो कृष्ण बलराम को अर्पित न करके खुद खाने लगे, और कृष्ण बलराम बोल रहे, अरे ये हमारा भोग है, तुम लोग क्यों खा रहे हो। और फिर नित्यानंद प्रभु वो क्या किए कि कृष्ण के डीटी को उठा लिए, और तुमने बलराम जी के डीटी को उठा लिया और ऑल्टर से बाहर आ रहे हो, और वो लोग चिल्ला रहे, अरे हमारा भोग हमारा भोग। और नित्यानंद प्रभु वो कहने लगे कृष्ण को, क्योंकि उनके हाथ में कृष्ण की ड्यूटी थी, तो नित्यानंद प्रभु कृष्ण की ड्यूटी को कहने लगे, तुम्हारे दिन भर गए, योर डेज आर ओवर, तुम्हारे दिन भर गए, अब इस कलयुग में तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में मेरे आराध्य देव श्रीमान गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए हैं, तो चलो ऑल्टर खाली करो। और ऐसा झगड़ा चल रहा है चारों के अंदर, और इस झगड़े में नित्यानंद प्रभु वो पुकारने लगे, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ भोजन दो, और तभी मेरी नींद खुली। तो चैतन्य महाप्रभु वो बहुत प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु फिर सच्ची माता से कहते हैं कि क्योंकि नित्यानंद प्रभु सपने में आए और वो भोजन मांग रहे थे, तो क्यों ना हम उनको प्रसाद के लिए बुलाएं। सच्ची माता ने कहा हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, नित्यानंद प्रभु को प्रसाद के लिए बुलाओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं नित्यानंद प्रभु को इन्विटेशन देने, प्रसादम इन्विटेशन, और नित्यानंद प्रभु को रास्ते में कहते हैं कि देखो भाई, मेरे घर में मेरी माता है और मेरी पत्नी है, थोड़ा ठीक से व्यवहार करना, बिहेव योर सेल्फ। क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो भावावेश में आकर अवधूत उनका जो प्रकोप आ जाता था कई बार, तो नित्यानंद प्रभु अपने कानों पर हाथ रखकर विष्णु विष्णु ये क्या बोल रहे हो, क्या मैं ठीक से व्यवहार नहीं करता? नहीं नहीं ठीक से व्यवहार करते हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जैसे करते हो वैसे ही करो ठीक से व्यवहार। और फिर जब वो पहुंचे तो वहां पर शची माता ने दोनों गौर निताई को बिठाकर प्रसाद खिलाना प्रारंभ किया। और फिर जब वो रसोई घर में गई कुछ और पकवान लाने के लिए, और जब वो बाहर आती हैं तो अपने आंखों से वो जो देखती हैं विश्वास नहीं होता उन्हें कि यही गौर निताय को जो उन्होंने बिठाया था प्रसाद के लिए, ये गौर निताय कृष्ण बलराम में परिणित हो गए। और चैतन्य महाप्रभु श्याम वर्ण के मोर मुकुट और बंसी ये सब पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, और नित्यानंद प्रभु बलराम की तरह नीले वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत वर्ण उनका। और जब शची माता ने ये देखा तो शची माता वहीं पर प्लेट उनके हाथ में जो वो गिर जाती है, वो बेहोश वहां पर पड़ जाती। तब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वो लोग वहां पर तुरंत होश में लाते हैं शची माता को, और तब शची माता जान लेती है कि ये जो कृष्ण बलराम है और गौर निताय है इनमें कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण बलराम एंड गौर निताय। तो ये हम बार बार क्यों सुना रहे हैं अलग अलग प्रसंगों के द्वारा, ताकि हम, क्योंकि नासिक में हाँ राम के विषय में सुना है, कृष्ण के विषय में सुना है, इतने अलग अलग अवतारों के विषय में सुना है, लेकिन गौर निताय के विषय में हमने इतना नहीं सुना होगा। और इसलिए ये सारे आचार्य और शास्त्र पर आधारित ये सारी कथाएं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं में एक और कथा है कि निमाई के रूप में, और निमाई उनको ये नाम मिला क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नीम वृक्ष के नीचे पैदा हुए, इसलिए उनको ये नाम मिला निमाई। और नीम वृक्ष का महत्व बताया गया है कि जो नीम वृक्ष होता है उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वो भूत पिशाच जो है वो निकट नहीं आते जब नीम का वृक्ष जहां पर होता है। इसलिए हमारे ये सारे जो अनर्थ हैं ये भूत पिशाच के रूप में बताए गए। तो इसलिए निमाई सुंदर की कृपा इस कलयुग में प्राप्त हमें होगी, तो ये जो भूत पिशाच रूपी जो अनर्थ हमारे ऊपर हावी हैं वो हावी नहीं होंगे। तो बचपन में जब पैदा हुए निमाई सुंदर, तो जब भी वो रोते तो जो नवद्वीप की महिलाएं जब तक वो भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन नहीं करती तब तक निमाई सुंदर चुप नहीं होते। इसलिए हरि 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 ऐसा नाम उच्चारण जब वो करती ये नवद्वीप की महिलाएं, तब जाकर निमाई चुप होते। अब छोटे से निमाई वो चल भी नहीं पाते थे, और जैसे ही नवद्वीप की ये महिलाएं माताएं ये निमाई को चुप करने के लिए हरि का नाम उच्चारण करने लगी, तो छोटे से निमाई वो रेंगते हुए नवद्वीप में बाहर गए और कुछ केले और नारियल और कुछ मिठाइयां, ये सब भिक्षा में मांगने लगे लोगों से। क्यों? इन महिलाओं, इन माताओं को इनाम के रूप में देने के लिए। और छोटे से चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे थे कि ये जो नवद्वीप की महिलाएं, वो द्वापर युग में वृंदावन की गोपियां हैं। और क्योंकि द्वापर युग में यही भगवान श्री कृष्ण निमाई सुंदर ने इन गोपियों के घरों से माखन चोरी किया था, तो इसलिए इस अवतार में वो इनको खिलाने खिलाना चाहते थे कि मैंने जो 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 चोरी किया उसका भरपाया इंटरेस्ट के साथ मैं खिला रहा हूं तुमको। और जैसे कि हमने ये सुंदर नाटिका में देखा कि छोटे से निमाई सब स्वर्णिम आभूषणों से सुसज्जित, और ये दो चोर देखते हैं इनको। तो हमारे आचार्य ये जो लीला, ये डकैत जो आए चोरी करने के लिए, और वृंदावन लीला में तृणावर्त की लीला, इसकी तुलना करते हैं। क्योंकि दोनों ने कंधों पर उठाकर ही ले गए भगवान को। जैसे ये चोर भी भगवान निमाई सुंदर को कंधों पे उठाया, और तृणावर्त ने भी कंधे पे उठाया भगवान को। तो ये डकैत आते हैं, जगन्नाथ मिश्रा और शची माता वहां पर देखते हैं उनके घर में निमाई सुंदर ऐसे स्वर्णिम आभूषणों से लदे हुए। तो ये चोर अब कि चलो उठाकर अपने अड्डे पर ले चलते हैं पहले, और वहां चोरी करेंगे। तो दोनों में अंतर क्या था? तृणावर्त ने भी भगवान की चोरी की, जो एक बवंडर के रूप में आया था उसने भी भगवान की चोरी की, और ये डकैतों ने भी भगवान की चोरी की, उठा के भगवान को ले जा रहे हैं। तो दोनों में अंतर ये था कि ये जो डकैत थे ये चैतन्य महाप्रभु को संदेश खिला रहे थे रास्ते में, लेकिन तृणावर्त ने कोई संदेश नहीं खिलाया था भगवान कृष्ण को। तो निमाई सुंदर कंधे पे, इस चोर के कंधे पे बैठे हुए संदेश खा रहे हैं, संदेश खा रहे हैं, और पूरा नवद्वीप का भ्रमण करते हुए अब ये अपना अड्डा ढूंढ रहे हैं। उनको उनका अड्डा नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपनी योग माया शक्ति से इनको और इनके कंधे पर बैठकर घूम फिर के फिर से जगन्नाथ मिश्रा के घर तक ये लाकर चैतन्य महाप्रभु को पहुंचाए। और इसे हमने नाटिका में देखा कि वो इतने आश्चर्य में पड़ गए, कह रहे हम इतना घूमे इतना घूमे, लेकिन ले दे के फिर से हम यहीं पे पहुंच गए, हमारा अड्डा कहाँ चला गया, ये क्या हुआ, क्या इतना संदेश खिला दिया इसको, और फिर इससे इतनी सारी बातें की, अच्छी अच्छी बातें की कि बेटा तुमको हम ये खिलाएंगे, यहां ले जाएंगे, मजा आएगा, ये वो। चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हो रहे थे छोटे से निमाई। तो इसलिए वहां पर जैसे ही अब शची माता और जगन्नाथ मिश्रा देखते हैं, वो लोग ढूंढ रहे थे इतने समय तक हमारा निमाई गया कहाँ, तो इनके कंधे से उतर कर निमाई जगन्नाथ मिश्रा से कहते हैं कि मैं खो गया था, मैं लापता हो गया था, लेकिन ये दो सज्जन व्यक्ति ये मुझे यहां तक पहुंचाए। तो जगन्नाथ मिश्रा इतना प्रसन्न हुए कि हाँ, इनको हमें कुछ अर्पित करना चाहिए, कुछ भेंट अर्पित करना, कुछ इनाम देना चाहिए। तो ये दोनों और भ्रमित हो गए कि भाई यहां पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो क्योंकि उनके मन में ये एक संशय आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, मतलब ये कोई असाधारण बालक है, बस केवल उतना संशय उनके मन में, और ये विचार आया जिसके वजह से उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सरलता से इन डकैतों को भगवत धाम पहुंचा दिया, क्योंकि हालांकि इनके मन में वो चोरी करने की इच्छा थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ अर्पित किया। क्या अर्पित किया? संदेश। संदेश, संदेश एक मिठाई। तो मिठाई अर्पित करते करते यहां पर भगवत धाम पहुंच गए वो। लेकिन तृणावर्त का किस्सा दूसरा था। तृणावर्त ने कुछ ऑफर नहीं किया, इसलिए वो बहुत नृशंस तरीके से मारा गया पहले, फिर उसको मुक्ति हुई, लेकिन पहले वो मारा गया। तो ये डकैतों के साथ चैतन्य महाप्रभु की एक लीला हुई। एक और बचपन की उनकी लीला ये हुई कि निमाई सुंदर, उन्होंने देखा कि नवद्वीप में एक ज्योतिषी आया था और ये एक बहुत बड़ा साधु के रूप में ऐसा ज्योतिषी कि हाथ देखते ही, चेहरा देखते ही बता दे कि उस व्यक्ति का पिछला जन्म क्या था। तब छोटे से निमाई वो गए इस ज्योतिषी के पास और अपना हाथ दिखाया कि बताओ मेरा पिछला जन्म क्या था। तो देखा छोटे बच्चे का क्या हाथ देखना, इतना बड़ा मैं ज्योतिषी हूं, कोई बड़े बड़े कोई नवदीप के लोग आने चाहिए, ये क्या छोटा सा आया है, तो कोई अभी तक आया नहीं था, तो चलो देख लेते हैं इसके हाथ को। धीरे धीरे ये कुछ लोगों को बताएगा तो और लोग आएंगे, मेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो निमाई, छोटे से निमाई की हथेली ली उसने हाथ में और देखने लगा और फिर वो ध्यान मग्न हुआ। इस प्रकार से वो देखता कि इसका पिछला जन्म क्या था। तो सोचिए किसका पिछला जन्म देखने की चेष्टा कर रहा था वो, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिछला जन्म देखने की चेष्टा कर रहा। तो उसने जैसे ही वो अपने ध्यान में गया, हथेली हाथ में लेकर देखने के पश्चात, तो उसके ध्यान में आता है कंस का कारागृह। और कंस के कारागृह में साक्षात नारायण अपने चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सारे आयुधों के साथ स्वयं विष्णु और देवकी और वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो भ्रमित होने लगा कि भाई ये क्या द्वापर युग में भी था क्या ये बच्चा, लेकिन कंस के कारागृह में कैसे पहुंचा ये, तो अभी तक नहीं समझ में समझ नहीं आ रहा है कि यही वो नारायण है, तो भ्रमित हो रहा है। तो फिर और प्रयास कर रहा है जानने का कि कौन कौन हो सकता है ये। फिर उसने अपना ध्यान लगाया तो फिर उसके ध्यान में उसे दिखाई दिया कि वही चतुर्भुज रूप में नारायण अब द्वारकाधीश के रूप में परिवर्तित हुए। तो और भ्रमित हो गया, कह रहे द्वारकाधीश के रूप। फिर उसने ध्यान लगाया तो वही द्वारकाधीश अब द्वापर युग से उसके पिछले युग में पहुंच गया, वो त्रेता युग में। तो वहां पर प्रभु श्री राम, जानकी, लक्ष्मण इन सबको देख रहा है। तो और आश्चर्यचकित और भ्रमित होते जा रहा है कि अरे ये बालक क्यों नहीं दिख रहा है, ये भगवान क्यों दिख रहे हैं मुझे सारे। फिर और ध्यान वो पक्का करता है तो वही प्रभु श्री राम अब वराह देव के रूप में परिणित होते हैं, नरसिंह देव के रूप में परिणित होते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में परिणित होते हैं, साक्षात बलदेव बलराम जी के रूप में, जगन्नाथ बलदेव इनके रूप में परिणित होते हैं। और वो अब एकदम पसीना पसीना हो रहा है, कांप रहा है, थर थर कांपते हुए उसने हाथ छोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु का और उसने कहा भैया तुम हो कौन भैया। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते पूछते अरे भाई तुम बताए नहीं मैं कौन हूं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाद में आ रहा, बाद में बताता हूं। और ऐसे पसीना पोंछते पोंछते वो गया और सबको बताने लगा, पूछने लगा कि ये बच्चा कौन है। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण, वो ऐसे मधुर तरीके से वो बताने लगे कि वो है कौन, हालांकि वो छन्न अवतार, लेकिन श्रीवास ठाकुर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के इस छन्न अवतार के विषय में कहा कि एक बार श्रीवास ठाकुर और अद्वैताचार्य, हालांकि अद्वैताचार्य इनकी योजना थी, तो अद्वैताचार्य वो श्रीवास ठाकुर और अन्य सारे जो पंचतत्व उनको लेकर कहते हैं कि आज हम केवल चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे, आज कृष्ण कीर्तन नहीं, चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन। तो लोग सब लोग एकत्रित होकर अचानक, अब चैतन्य महाप्रभु भी आते थे कृष्ण कीर्तन में, लेकिन आज अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर इत्यादि ये सब आकर सब जैसे 1 2 3 स्टार्ट ऐसे, और सभी लोग गौरांग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, इस प्रकार से कीर्तन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, मेरा कीर्तन क्यों कर रहे हैं? और वो जाकर अपने कुटिया में लेट गए गुस्सा होकर। तो फिर श्रीवास ठाकुर वहां पहुंचते हैं, और फिर श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के सामने सूर्य को अपनी हथेली से छिपाने का प्रयास करते। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, क्या कर रहे हो? बोले कि आप जो अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहे हो, मैं भी वही प्रयास कर रहा हूं कि अपनी हथेली से सूर्य की रोशनी को छिपाऊं। तो क्या कोई व्यक्ति अपने हथेली से सूर्य को छिपा सकता है? क्या सूर्य की रोशनी को छिपा सकता है? नहीं। उसी प्रकार से हे महाप्रभु, आप कितना भी प्रयास करो, आप अपने आप को छिपा नहीं पाओगे। आप साक्षात कृष्ण हो, कितना भी प्रयास करो आप अपने आप को छिपा नहीं पाओगे। तब फिर चैतन्य महाप्रभु भी मुस्कुराने लगे। तो ये सारी जो घटनाएं, ये सारे प्रसंग, ये भगवान के पार्षद, ये हमको, हालांकि भगवान अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये छिपने नहीं दिए। और भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है कि भगवान का ऐश्वर्य भगवान को छिपने नहीं दिया। तो श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जब गौर निताई की प्रस्थापना की इस्कॉन में, तो उन्होंने गौर निताय की प्रस्थापना इस तरीके से की कि पाश्चात्य देश में यदि हम इस्कॉन के मंदिरों में देखें तो ज्यादातर वहां पर गौर निताय की मूर्तियों, इन अर्च विग्रह की प्रस्थापना श्रील प्रभुपाद ने करवाई। क्यों? यहां तक कि वृंदावन में कृष्ण बलराम को मुख्य अर्च विग्रह रखा, इस्कॉन का जो मंदिर है उनके मुख्य अर्च विग्रह राधा कृष्ण नहीं, कृष्ण बलराम है। तो जब प्रभुपाद को पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा इसलिए कि मैं ये बताना चाहता हूं कि यही कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं, और जब तक इन गौर निताई की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती तब तक राधा श्याम सुंदर का दर्शन और उनकी कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जब मैं प्रचार के लिए जाता हूं ये सारे विदेश के मंदिरों में, तो वहां पर बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए कि ऐसे ऐसे जगहों पर जहां पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि लोग भगवान श्री कृष्ण को जान पाते, वो गौर निताय के अर्च विग्रह की आराधना कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं, और केवल मंदिर नहीं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसे ऐसे घरों में गौर निताय की कृपा उन्होंने बरसाई है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैं स्कॉटलैंड गया था, यूके में स्कॉटलैंड जगह है, तो वहां पर वहां के भक्त बहुत ही, उनका बहुत रेवोल्यूशनरी तरीका गौर पूर्णिमा मनाने का उस समय रहा करता था। आजकल पता नहीं वो लोग वैसा करते हैं क्या। तो बहुत साल पहले वो लोग गौर पूर्णिमा इस प्रकार से मनाते कि गौर पूर्णिमा के एक हफ्ता पहले वो पूरे स्कॉटलैंड में ये पोस्टर लगाते, मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, फ्लाईओवर्स, उन जहां जहां पर ट्रैफिक होता, लोगों का आना जाना होता, वहां पर ये स्टिकर्स पोस्टर्स लगाते। क्या लिखा रहता है इस पर? चैंट गौरांगा, चैंट गौरांगा, चैंट गौरांगा। तो ये सारे स्कॉटिश लोग, और ये रात में जाकर सब पोस्टर लगा देते ये लोग। तो ये लोग जब सुबह उठते अपने ऑफिस जाने के लिए, देखते बाहर जाकर देख रहे हैं दीवारों के ऊपर गौरांगा, चैंट गौरांगा। तो अभी पढ़ रहे हैं तो गौरांगा चैंट कर रहे हैं ना, किसी को पता नहीं क्या है गौरांगा, चैंट गौरांगा। गाड़ी चला रहे हैं, सामने बड़ा एक होर्डिंग आ गया, चैंट गौरांगा। कोई फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे, फ्लाईओवर के ऊपर लिखा हुआ है चैंट गौरांगा। जितने सारे फ्लाईओवर है सब भरा हुआ है चैंट गौरांगा गौरांगा। तो सभी सभी चर्चाएं, पूरे स्कॉटलैंड में चर्चा चल रही है कि ये है क्या गौरांगा। समझ में नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है। लेकिन हाँ तुमने देखा, हाँ मतलब मैंने भी देखा, गौरांगा गौरांगा सब जगह। तो इनकी युक्ति देखिए, कई बार डिवोटीज वो बहुत चतुर होते हैं, इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करा लेते हैं लोग, और वो भी चैतन्य महाप्रभु का नाम। तो अब हुआ क्या कि ये जिस वर्ष इस प्रकार से इनका गौरांगा कैंपेन चल रहा था, सब जगह पर स्टिकर चैंट गौरांगा चैंट गौरांगा, तब तो ये लोग ने पुलिस में जाके कंप्लेन किया कि भाई ये क्या है सब जगह पर चैंट गौरांगा। तो पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, उनको पता लग गया कि ये हरे कृष्णा वालों की करतूत है। तो वो हरे कृष्णा मंदिर में पहुंचे। तो जब हरे कृष्णा मंदिर में पहुंचे, और कौन से दिन पहुंचे, गौर पूर्णिमा के दिन। और वहां जब पहुंचे तो वहां पे सब लोग निताय गौरांगा निताय गौरांगा उसका कीर्तन कर रहे। तो हालांकि फिर वो जान गए कि ये भाई ये इनके कोई भगवान है और उनका नाम है, तो उतना सीरियसली वो लिए नहीं, केवल उनको कह दिया कि ये अगली बार से आप ये पोस्टर वोस्टर मत लगाया करो इतना। तो ये कथा यहां तक खत्म नहीं होती। अब हुआ क्या कि ये जो गौरांगा कैंपेन उस वर्ष चल रहा था, तो कुछ टूरिस्ट वो न्यूजीलैंड से वहां पर आए हुए थे, स्कॉटलैंड आए हुए थे ऐसे टूरिज्म के लिए, और उन्होंने ये सब कुछ देख रहे थे गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो ये टूरिस्ट जो आए हुए थे न्यूजीलैंड से, तो इन्होंने इनमें से कुछ जो टूरिस्ट थे उनका बिजनेस था ये वीडियो गेम पार्लर का, क्षमा करना, वीडियो गेम पार्लर का बिजनेस था इनका। तो इन्होंने न्यूजीलैंड में जाके एक, इनको पता लग गया, सब न्यूज में था कि हरे कृष्णा डिवोटीज के द्वारा ये गौरांगा का नाम का कैंपेन चल रहा था। तो फिर ये जाकर इन्होंने एक नया वीडियो गेम डिस्कवर किया किधर, न्यूजीलैंड में। और वो वीडियो गेम क्या था कि एक बहुत ही तेज चलने वाली कार और एक कोई हरे कृष्णा मॉन्क को टकरा कर जाएगी, बहुत ही वायलेंट गेम था। तो जैसे ही वो उस हरे कृष्णा मॉन्क को टकराएगी तो वो मॉन्क जो है वो गौरांगा चिल्लाएगा, तो वहां पे उसको मार्क जो भी स्कोर उसका बढ़ेगा, ऐसे गौरांगा चिल्लाएगा। तो इस प्रकार का और भी उसके अंदर कुछ फीचर्स थे उस गेम के। तो अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति, मतलब एक कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी, वो इस वीडियो गेम पार्लर में वो रोज आकर 8 घंटा वो यही वीडियो गेम खेलता। कहाँ का? वो न्यूजीलैंड का। 8 घंटा वो ये वीडियो गेम खेलता, और जैसे ही वो कोई स्कोर जीतता तो वो जो वीडियो गेम में गौरांगा फ्लैश होता तो ये भी चिल्लाता गौरांगा, ऐसे वो 8 घंटा क्या चैंटिंग कर रहा था, गौरंगा गौरंगा 8 घंटा रोज। सोचिए हम लोग हरे कृष्णा वाले भक्त भी 8 घंटा गौरंगा चैंटिंग किया है क्या किसी ने? लेकिन ये 8 घंटा जीतता हुआ गौरंगा गौरंगा गौरंगा, कुछ पता नहीं इसे कि कौन है गौरंगा। फिर हुआ क्या कि ऐसे ये काफी समय तक वो गेम खेलता गया खेलता गया। फिर ऐसे होता है ना कि इसका एक मित्र इसको ऐसे ही बोले कि चलो यहाँ ये जो एक हरे कृष्ण वाले हैं, ये लोग फ्री फूड देते हैं, बहुत अच्छा खाना पीना रहता है इनका और फ्री रहता है, चलो खा पी के आते हैं कुछ। तो हुआ क्या कि वहां न्यूजीलैंड का जो इस्कॉन का केंद्र है, उधर के फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बूथ पर पहुंचे कौन, ये जो 8 घंटा इसका वीडियो गेम खेलता और उसका फ्रेंड। तो उधर पहुंचे तो वहां पर कीर्तन चल रहा था फूड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो ये खाते हुए कीर्तन तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है चल रहा है चल रहा है। फिर लास्ट में वो जो लीड सिंगर जो माइक पे गा रहा था, उसने लास्ट में गाना शुरू किया, निताई गौरांगा निताई गौरांगा। तो इसे खाते खाते रुक गया ये, वो ध्यान से वापस सुनने लगा ये क्या गा रहा है, निताई गौरांगा निताई गौरांगा। तो उसने अपने मित्र से पूछा कि अरे ये कैसे जानता है, ये भी खेलता है क्या। तो उसने पूछा क्या खेलता है, बोला अरे ये तो मेरा फेवरेट वीडियो गेम का एक फीचर है गौरांगा, ये क्या गा रहा है। तो उसने वो प्रसाद खाते खाते उधर ही रुक गया, उसके पास गया, पास में जाके सुन रहा है वापस निताई गौरांगा। अब क्या है कि कोई नया व्यक्ति लीड सिंगर के सामने जाके ध्यान से सुने, तो लीड सिंगर उसको जानबूझ के निताई गौरांगा निताई गौरांगा, अरे तुम ही बोलो तुम क्यों खड़ा है ऐसे, बोलो बोलो निताई गौरांगा। तो उसके बाद में पूरा कीर्तन होने के बाद में उसने वो लीड सिंगर के ऊपर ही अटेंशन था उसका, उसको जाके बिठाया पूछा कि वो क्या क्या गा रहे थे। तो फिर उन्होंने समझाया, जैसे कि हम कोई नया व्यक्ति आता तो समझाते ना, गौर निताय कौन है गौरंगा कौन है, तो सब समझाया। और जब उसे समझ में आया कि भैया वो जो 8 8 घंटा गौरंगा गौरंगा चैंटिंग करता था, उसको तो नहीं पता था वो चैंटिंग करता था, वो तो खाली चिल्लाता था, लेकिन जब समझ में आया कि साक्षात इनके भगवान है, तब फिर वो धीरे धीरे गौरांग महाप्रभु की कृपा से वहां के इस्कॉन मंदिर में आना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये स्टोरी मुझे इसी डिवोटी ने सुनाई, और ये डिवोटी अभी हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी है, देवामृत स्वामी महाराज, इनका इनिशिएटेड डिसाइपल है अमेरिका में। तो जब मैं लॉस एंजलिस गया था, तो लॉस एंजलिस में ये डिवोटी ऐसे ही मुझे लगा बहुत ही सीरियसली ये चैंटिंग कर रहा था, तो मैंने पूछा कि वेर आर यू फ्रॉम एंड हाउ डिड यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जब उन्होंने बोला यू वॉन्ट टू लिसन, इट्स अ वेरी क्लासिक स्टोरी, बोला यस डेफिनेटली। तो जब उन्होंने ये सुना, मेरे को इतना इतनी प्रेरणा मिली, इतना इंस्पिरेशन मिला कि देखो कोई चैतन्य महाप्रभु की कृपा, कहाँ स्कॉटलैंड के डिवोटीज पोस्टर्स लगाकर, ये न्यूजीलैंड के टूरिस्ट आए, उनमें से उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और ये 8 8 घंटा उस वीडियो गेम को खेलते खेलते गौरांग ये चैंटिंग करते करते आज वो इस्कॉन का एक इनिशिएटेड डिवोटी है। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की। तो ऐसी अनगिनत कथाएं हैं, ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला 500 साल पहले कर कर चले गए, नहीं, उनकी लीलाएं अभी भी चल रही हैं। और इस्कॉन में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पर चैतन्य महाप्रभु की ऐसी ऐसी विशेष कृपा और लीला कि उसकी एक पुस्तक लिख सकता है कोई मोटी, कि अभी भी उनकी लीलाएं चल रही हैं। लेकिन हम जो यहां पर नासिक धाम में हैं, हम अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे विशेष रूप से हमारे गौर निताई के समक्ष, कि जिनकी कृपा से हमें श्री श्री राधा मदन गोपाल जी, और हाँ उनकी भी सेवा, श्री श्री गौर निताई की सेवा जो हम कर रहे हैं, इन दोनों की सेवा एक साथ यहाँ पर नासिक धाम में हमें प्राप्त हुई है। श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज के इस सुंदर गौर पूर्णिमा महोत्सव पर हम श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, एक बहुत सुंदर प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में कही गई, जिसमें वो क्या प्रदान करने आए हैं ये बताया गया है। इसके अंदर कहा है, आनंद लीला मय विग्रहाय हेमाब दिव्य छवि सुंदराय तस्मय महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। इस सुंदर प्रार्थना में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु एक सिंह के समान है, क्योंकि एक हालांकि वो जन्मे भी सिंह राशि में, जैसे आज उनका अवतीर्ण हुआ तो सिंह राशि में चैतन्य महाप्रभु जन्मे, और उनकी जो कृपा है वो कृपा की तुलना जो लायनेस होती, लायनेस शेरनी का दूध, उसके समान है। तो ये बताया गया है कि जो लायनेस का दूध होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि आपको सोने का पात्र चाहिए उसको रखने के लिए। ऐसे आप घड़े में डालोगे तो घड़ा फट जाएगा, केवल सोने का पात्र उसको अपने अंदर अटा सकता है, किसके, शेरनी के दूध को। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा उस शेरनी के दूध के समान है, और हमारा हृदय जो है वो एक पात्र के समान है। यदि बहुत ही कमजोर ये पात्र होगा तो ये कृपा इस हृदय को फाड़ कर बाहर आ जाएगी। तो फिर हमारे आचार्य पूछते हैं कि ये जो हमारा हृदय रूपी पात्र है इसको कौन से वस्तुओं से हमें बनाना है, कौन से धातु इस्तेमाल करने हैं। तो चार धातुओं से हमारा ये हृदय रूपी पात्र हमें बनाना है, और वो है तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कि तृण से भी अधिक सहिष्णु और एक वृक्ष, तृण से भी अधिक नम्र और वृक्ष से भी ज्यादा जो सहनशील होता है, और हर समय दूसरों को मान देते हुए स्वयं के लिए बिल्कुल मान की अपेक्षा न रखते हुए, ये चार वस्तुओं से जो अपने हृदय रूपी पात्र को बनाता है, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु की वो जो कृपा है उस दूध के समान, जो उसकी उनकी कृपा है, उस कृपा को वो अपने हृदय में समा पाएगा। तो यही हमारी प्रार्थना, और चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें ये प्रार्थनाएं लिख कर दी है कि हरिनाम संकीर्तन करते समय हमें किस भावना में करना है, वो यही है, और तब जाकर हम कीर्तनीय सदा हरि इस अवस्था को प्राप्त होंगे, जो कि इस मनुष्य जीवन का विशेष रूप से कलयुग में सर्वोच्च परम उद्देश्य है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, इताई गौर प्रेमानंदी।